हवेली के ऊपरी हिस्से में बनी विशाल की पढ़ाई का कमरा इस वक्त आधी रोशनी में डूबी हुई थी। लकड़ी की अलमारी से सटी मेज पर पीली लाइट वाला लैंप चल रहा था, जिसकी रोशनी किताबों के खुले पन्नों पर पड़कर उन्हें और भी गंभीर बना रही थी। बाहर गलियारे में सन्नाटा था, बस कभी कभी किसी नौकर की हल्की सी आहट जो फिर खामोशी में घुल जाती। विशाल किताब पढ़ने की कोशिश कर रहा था। कोशिश, उसकी आंखें पंक्तियों पर चल तो रही थीं, लेकिन दिमाग कहीं और अटका हुआ था। वही डाइनिंग हॉल, वही नजरें, वही आर्यन का सख्त होता जबड़ा। उसने गहरी सांस ली और किताब का एक पन्ना पलटा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, लेकिन शब्द अंदर नहीं उतर रहे थे। उसका मन बार बार उसी सवाल पर लौट रहा था, आर्यन श्यामली को ऐसे क्यों देख रहा था? ये कोई साधारण नजर नहीं थी, न कोई हल्की सी जलन, न कोई क्षणिक बेचैनी। उसमें हक था, उसमें दावा था, और दावा अक्सर बिना वजह नहीं होता। विशाल ने किताब बंद की और उसे मेज पर रख दिया। नहीं, उसने खुद से कहा, ऐसे अंदाजे नहीं लगाने चाहिए। फिर भी मन नहीं माना। वो उठा, अलमारी के पास गया और यूं ही एक किताब निकाल ली, बिना देखे कौन सी। किताब हाथ में लेना बस एक बहाना था, असल वजह कुछ और थी। आर्यन। वो कमरे से निकला और गलियारे में कदम बढ़ाए। हवेली की रातें अजीब होती हैं, खामोश लेकिन बोझिल, जैसे दीवारें भी सब देखती सुनती हों। आर्यन के कमरे के बाहर पहुंचकर उसने एक पल रुककर सांस ली। दरवाज़ा आधा बंद था, अंदर हल्की रोशनी थी। विशाल ने बिना आवाज़ किए दरवाजे को थोड़ा सा धकेला और वहीं वो रुक गया। आर्यन अपने बिस्तर के किनारे बैठा था, कमरे में कोई और नहीं था। उसका फ़ोन उसके हाथ में था और स्क्रीन की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी आँखें, वो आँखें जो आमतौर पर आत्मविश्वास से भरी रहती थीं, इस वक्त कुछ और ही कह रही थीं। वो स्क्रीन को ऐसे देख रहा था जैसे दुनिया वहीं सिमट आई हो। विशाल ने बिना देखे ही समझ लिया, फ़ोन में कोई बहुत ख़ास है। आर्यन के होंठ हिले, आवाज़ बहुत धीमी थी लेकिन कमरे की खामोशी में साफ सुनाई दे रही थी। श्यामली, नाम उसके मुँह से ऐसे निकला जैसे कोई दुआ हो या कोई वादा। उसने फ़ोन को थोड़ा पास किया, उंगलियां स्क्रीन पर फिसल गईं, शायद तस्वीर को छूने की कोशिश में। तुम जानती नहीं हो, उसकी आवाज़ में कंपन था, तुम्हें देखकर मेरे अंदर क्या क्या टूटता है। वो पल भर रुका, जैसे अपने ही जज्बातों को समेट रहा हो। तुम सिर्फ मेरी हो श्यामली, इस बार उसकी आवाज़ में साफ दावा था। दुनिया कुछ भी कहे, हालात कैसे भी हों, तुम मेरी हो। उसने फ़ोन को सीने के करीब कर लिया। मैं सब ठीक कर दूंगा, वो बुदबुदाया, बहुत जल्द। ये हवेली, ये रिश्ते, ये बंधन, सब। उसकी आंखें बंद हो गईं। हम दोनों कहीं दूर चले जाएंगे। उसके शब्द अब सपनों जैसे थे, इतनी दूर कि कोई हमें ढूंढ ना सके, जहां सब कुछ हमारे हिसाब से होगा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति आई, फिर हल्की मुस्कान, बस तुम और मैं। वो थोड़ा हंसा खुद से, और फिर हम शादी करेंगे। ये कहते हुए उसकी आवाज़ लगभग टूट गई, किसी की इजाज़त के बिना, किसी डर के बिना। उसने फ़ोन की स्क्रीन को आखिरी बार देखा और उसी पल फर्श पर हल्की सी आवाज़ हुई। विशाल का पैर अनजाने में आगे बढ़ गया था, आर्यन जैसे बिजली से झटका खा गया हो। उसने झट से फ़ोन बंद किया और उठकर खड़ा हो गया। कौन है? उसकी आवाज़ में डर साफ था। दरवाज़ा पूरी तरह खुला, विशाल अंदर आ चुका था। मैं, उसने सामान्य लहजे में कहा, किताब लेने आया था। आर्यन की धड़कन तेज थी, उसकी नज़रें विशाल के चेहरे पर जमी थीं, जैसे पढ़ने की कोशिश कर रहा हो कि उसने कितना सुना। तुम कब आए? आर्यन ने पूछा, ज़रूरत से ज़्यादा सख्ती के साथ। अभी, विशाल ने सहजता से कहा, दरवाज़ा खुला था। आर्यन ने राहत की सांस ली, लेकिन पूरी नहीं। उसने फ़ोन को तकिए के नीचे सरका दिया। विशाल की नज़र ये सब देख चुकी थी। आर्यन भाई, उसने हल्के से कहा, आप कुछ देख रहे थे? आर्यन तुरंत मुड़ा। नहीं, उसने झट से कहा, बस काम का कुछ था। काम का? विशाल ने सवालिया नज़र से देखा। आर्यन आगे बढ़ा, मेज़ के पास गया और एक फाइल उठाकर दिखाने लगा। हिसाब किताब, उसने कहा, पुराने कागज़। विशाल चुप रहा, उसकी चुप्पी सवाल बनकर कमरे में फैल गई। क्या हुआ? आर्यन झुंझला गया, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ नहीं, विशाल ने धीरे से कहा, बस आप आजकल थोड़े बदले बदले लग रहे हैं। आर्यन सी आंखों में चिंगारी सी चमकी। मतलब? मतलब ये कि, विशाल ने शब्द तौले, डाइनिंग हॉल में आपकी नज़रें। बस, आर्यन की आवाज़ तेज हो गई, बहुत हो गया विशाल। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, विशाल ने संयम से कहा, इसलिए पूछ रहा हूँ। और मैं तुम्हें बता दूँ, आर्यन आगे बढ़ा, मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है? उसकी आवाज़ अब सख्त थी, अपनी हद में रहो,
उसने साफ कहा, जो तुम्हें दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। विशाल कुछ पल उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, ठीक है। उसने किताब कसकर पकड़ी। माफ कीजिए, उसने कहा, मुझे नहीं पूछना चाहिए था। आर्यन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी पीठ विशाल की तरफ थी। विशाल दरवाजे की ओर बढ़ा। बाहर जाते वक्त उसने एक पल को रुककर पीछे देखा। आर्यन अब भी वहीं खड़ा था, तनाव में जकड़ा हुआ, और तकिए के नीचे एक छुपा हुआ राज। विशाल चुपचाप बाहर निकल गया। गलियारे में चलते हुए उसके चेहरे पर चिंता साफ थी। अब उसे यकीन हो चला था, जो उसने डाइनिंग हॉल में देखा था वो सिर्फ शुरुआत थी, और ये कहानी खतरनाक मोड़ की ओर बढ़ रही थी। दूसरी ओर कमरे में अकेला खड़ा आर्यन धीरे धीरे बिस्तर पर बैठ गया। उसने तकिए के नीचे से फोन निकाला। स्क्रीन फिर चली, श्यामली की तस्वीर फिर सामने थी। उसने गहरी सांस ली। कोई नहीं रोक पाएगा, वो खुद से बोला। बाहर हवेली की रात और गहरी हो चुकी थी, और रिश्तों की दरारें अब साफ दिखने लगी थी। आर्यन ने फोन को एक बार फिर हथेली में कस लिया। तस्वीर पर उसकी उंगली ठहर गई, जैसे उस छवि से ताकत खींच रहा हो। बाहर गलियारे में विशाल के कदमों की आवाज दूर होती चली गई, लेकिन आर्यन के भीतर शोर और तेज हो गया था। सब मेरे खिलाफ है, उसने धीमे से कहा, लेकिन मैं हारने वालों में से नहीं हूँ। उसने फोन बंद किया और आंखें मूंद ली। हवेली की दीवारें चुप थीं, लेकिन उसकी सोच अब खतरनाक रूप से साफ हो चुकी थी। ये सिर्फ चाहत नहीं थी, ये जिद थी, और जिद अक्सर किसी न किसी को तोड़ ही देती है।